الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا پیارا پروگرام معذور ہوں مجبور نہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سعی کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابتداً ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت والے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہمارا کتنا ٹائم لگے گا؟ شاید چند منٹ کی بات ہے، لیکن اجر کتنا زیادہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے سچے نبی کیا فرما رہے ہیں، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے نفاق سے بھی آزاد اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد، یعنی جنت کے مژدے سنائے جا رہے ہیں، اور حشر بھی اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے آخری نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا بڑا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات میں افضل کیا، انسان کو اعلیٰ کیا، انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالی نے علم کی صلاحیت سے نوازا، اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی، انسان کو عقل سے نوازا۔ دیگر جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں دی، دیگر جانوروں کو اللہ پاک نے عقل نہیں دی۔ اگر ہم اپنی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ کو دیکھیں کہ کیوں، کیا ہم بھاری جسم ہیں؟ ہم بھاری تو نہیں ہیں، انسان سے تو بھاری جسم ہاتھی کا ہے۔ اگر ہم قد کی وجہ سے کریں تو زرافہ بہت بڑا ہے، اگر ہم کسی اور وجہ سے کریں کیا خصوصیت ہے، ہمارے تو پر بھی نہیں لگے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، لیکن انسان کو پھر بھی افضل کیا، انسان کو پھر بھی اشرف کہا گیا کہ یہ تمام مخلوقات میں اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اس لیے کہ انسان کو اللہ پاک نے علم سے آشنا فرمایا ہے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمیں اللہ پاک نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، تو وہیں پر اللہ پاک نے ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ ہم کہیں کسی مقام پر اپنے آپ پر، اپنی ذات پر بھروسہ کریں، فیصلہ کریں۔ کہاں بھروسہ کرنا ہے، کہاں بھروسہ نہیں کرنا، اور کہاں فیصلہ کرنا ہے، کہاں فیصلہ نہیں کرنا، کیا ہے خود اعتمادی، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے کہ خود اعتمادی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے خود اعتمادی۔ انشاءاللہ رکن شورا کی پیاری پیاری گفتگو ہوتی ہے، آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالے سے ہم پیارے پیارے رکن شورا فضیل عطاری زیدہ مجدہ انشاءاللہ عزوجل، ان کے پیارے پیارے مدنی پھول انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ایک مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ضرور ہاتھ آئے گا اور اعتماد انشاءاللہ ہمارے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ آج سب ابتدان تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ہر مرتبہ کی طرح آپ آج بھی اپنے وقت عطا فرمایا، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آپ ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج سب خود اعتمادی یہ آج ہمارا موضوع ہے، کیا فرماتے ہیں خود اعتمادی کیا ہے؟
خود اعتمادی کے جو معنی بنتے ہیں نا
جی،
یعنی اپنے آپ پر بھروسہ کرنا، اعتماد مینس بھروسہ کرنا، अब इसमें जो दुनियावी एतबार से जो समझाया जाता है, तो इसमें बहुत कुछ, जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं
जी
जो वर्कशॉप वगैरह लगाते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन सब अपने अपने एक अंदाज में समझा रहे होते हैं कि बंदे के अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, कहीं घबराना नहीं चाहिए, कहीं डरना नहीं चाहिए, किसी महफिल में बैठे तो बोलना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, ये खुद एतमादी है। लेकिन मैं जो खुद एतमादी को सेल्फ कॉन्फिडेंस का नाम भी इसको
जी
देते हैं कि
जी
कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर होना चाहिए, जो मैं समझ सका इसमें कि ये खुद एतमादी एक, ये कोई शरई इस्तिला तो नहीं है,
सही
सीधी बात है,
सुनवाए
ये तो कोई एक दुनियावी तौर पर एक इस्तिला है कि
इस्तेला
खुद एतमादी होनी चाहिए, और इसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है और बहुत कुछ बताया जाता है, और बात चीजें तो ऐसी होती है जो शरअन दुरुस्त भी नहीं होती। लेकिन मैं जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को मैं समझ सका वो ये है कि किसी मामले में मतलब के पीछे ना हटना।
सही
अच्छा, अब किसी मामले पर आए तो इस पर भी फिर कलाम होगा भाई,
कलाम
किस
होगा
मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूं आपको, जैसे आप यहाँ तशरीफ फरमाए, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए, आपकी एक फील्ड है, आप आलिम है माशाल्लाह, और आप बयान करते हैं, सुन्नतें सिखाते हैं माशाल्लाह, बेहतरीन आप होस्ट हैं, यहाँ बैठ कर एक ये चला रहे होते हैं, तो अब मैं आपको ये कहूँ कि भाई आप कैमरा भी चलाओ जाकर, तो आप
मुश्किल हो
बोलोगे
जाएगी।
नहीं, मैं भरोसा है, एतमाद है मुझ पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस,
ये एक्स्ट्रा वो हो
अभी
जाएगा हमारा,
अभी मैं जाता हूँ, अभी चलाता हूँ, तो आप कैमरा नहीं चला सकते,
नहीं चला सकते।
नहीं चला सकते, लेकिन देखिए अभी नहीं चला सकते,
जी
लेकिन ये नहीं है कि आप कभी भी नहीं चला सकते। तो बंदा है ना, कई चीजों पर ऐसा होता है कि वो हार मान जाता है, पीछे हट जाता है, नहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। आप ये कहें, लेकिन मेरे नजर में सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है कि इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना आसान मौजू नहीं है,
जी
इसके मतलब के बहुत सारे जो है वो रास्ते निकलते हैं, बहुत कुछ इसमें निकलता है, और बाज लोग जो है बस वो यही समझ रहे होते हैं कि कॉन्फिडेंस है। जैसे मैंने ये मिसाल दी,
जी जी
तो आप, मैं ये कॉन्फिडेंस को समझाऊं कि आप मुझे बैठे बैठे ये कहें कि देखें कैमरा मैंने चलाना सीखा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है,
जी हाँ
यानी आप ये जवाब दें।
सही
अब आप बोले, अब आप आए बाएं हम शायद करें, वो अच्छा देखता हूँ, तो फिर तो झूठ बोलेंगे आप, झूठ निकल जाएगा। हाँ, वो तो चला सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस किस काम का जिसमें झूठ बोलना पड़े, वो कॉन्फिडेंस किस काम का जिसमें गीबत करनी पड़े, वो कॉन्फिडेंस किस काम का जिसमें बंदा बेहया हो जाए, बेबाक हो जाए, वालदेन के सामने बैठा हुआ है, कोई बात हो रही है, बोले मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो बोलना शुरू कर दे। अरे भाई, बोलना भी है, नहीं बोलना, दुरुस्त बोल रहे हो, दुरुस्त नहीं बोल रहे हो, ये तो देखें, तो ये कॉन्फिडेंस तो ये किसी काम का नहीं है। अगर माँ बाप की बेअदबी हो जाती है, रिश्तेदारों में बैठे हैं, दोस्त अहबाब में बैठे हैं, कहीं कोई वैसी बात हो रही है, तो आपको जो आप बोलो मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, मुझे तो हर चीज का पता होता है, तो कॉन्फिडेंस मैं ये समझाऊं कि आप ये बोले कि भाई मुझे कैमरा चलाना नहीं आता, ये
जी
कॉन्फिडेंस है आपका ये, लेकिन ऐसा नहीं मैं नहीं चला सकता, सीखूंगा तो चला लूंगा,
सीखूंगा तो चला लूंगा, बिल्कुल
सीखूंगा तो मैं चला लूंगा। जैसे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया मोबाइल इस्तेमाल पहले नहीं फरमाते थे
जी हाँ
आप, लेकिन आपने खुद फरमाया मैं खुद नहीं जाता इस पर, जाऊं सीखना चाहूं तो सीख सकता हूं,
सीख सकता हूँ।
तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब कॉन्फिडेंस ये है कि जो बंदे को नहीं आता उसको एक्सेप्ट कर ले, और ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, वो कर सकता। अच्छा, फिर इसमें ये भी चीज है कि क्या जायज है क्या नाजायज है। देखो, शरीयत दीन
बिल्कुल
इस्लाम को हम हमेशा पहले रखेंगे,
बेशक
पहले हम रखेंगे,
हम मुसलमान हैं,
हाँ हम मुसलमान हैं, और हम दीन इस्लाम शरीयत को पहले रखेंगे। अब कहीं हम कॉन्फिडेंस के नाम पर तकबर पे ना आ जाए, दूसरे को कमतर, दूसरों को घटिया
अल्लाह
समझ देना लग जाए कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, वो तो ऐसे ही है, तो ये तो तकबर हो जाएगा, ये तो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कॉन्फिडेंस के नाम पर हम कहीं खुद पसंदी पर ना आ जाए, खुद पसंदी यही है कि जो बंदे के अंदर कमाल है इसको ये अपना वो समझना, यानी जो भी इसके
अपनी महारत
अंदर
समझना,
स्किल्स है उसको अपना कमाल जानना,
अपना
ये
कमाल,
मेरी वजह से मैं बड़ा जहीन हूँ, तो भाई जहीन है तो जहानत भी अल्लाह ने दी है,
बेशक
मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ तो ये रब की अता है, मेरे पास पैसा है इसलिए पैसा है मेरे पास कि मुझे बड़ा काम के ट्रिक्स आते हैं, और बड़ा मैं मेहनत करता हूँ, तो मेहनत जो तू करता है तो वो भी अल्लाह की तौफीक से
बेशक
अता की, अल्लाह की,
बेशक
उसको जवाल भी लग सकता है।
जवाल भी
तो
लग सकता
कॉन्फिडेंस के नाम पर बंदा कहीं खुद पसंदी में ना पड़ जाए, कहीं तकबुर में ना पड़ जाए, कहीं झूठ में ना पड़ जाए। तो कॉन्फिडेंस में ये समझाऊं कि किसी चीज में मतलब जो शरअन जायज हो दुरुस्त हो उसमें जो है वो पीछे ना हटना, मिसाल के तौर पे यूं समझ ले, यानी ये ना समझे कि किसी चीज में मुझे कोई मतलब कि मैं गिर गया, मैं नहीं कर सका इस काम को तो अब मैं कर ही नहीं सकता हूं। देखिए, दुनिया में जो भी ऊपर पहुंचे हैं या बड़े बड़े मकाम और बड़े बड़े मर्तबों पर पहुंचे, इनकी आप लाइफ उठाकर देख लें,
जी
इनकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी है।
बेशक
वो कहते हैं नाकामी के बाद ही कामयाबी मिलती है, बंदे को तजर्बात कब मिलते हैं। अब जैसे आपने फरमाया फैसला करने की ताकत,
जी
अब फैसला करने की ताकत को एक दिन में तो नहीं आ जाती,
नहीं आती,
एक तजर्बा होता है ना, एक
तजर्बा
पूरी जिंदगी गुजरती है। लोग जो बड़े लोगों के से बात करते हैं, मशवरा करते, तो क्यों, کیونکہ ان کی زندگیاں گزری ہیں, ان کو بڑے تجربات ہوتے ہیں, تو فیصلہ کرنے کی طاقت بھی جو ہے وہ تجربے کے ساتھ آتی ہے, تو وقت کے ساتھ سب ہوتا ہے. تو گر کر اٹھنا چاہیے, گر کر گر ہی نہیں جانا چاہیے, یہ کانفیڈینس نہیں ہے. جیسے بچہ ہے, چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, لیکن وہ کوشش کرتا رہتا ہے, چلنا سیکھ جاتا ہے. اصل میں اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کانفیڈنس نہیں ہوتا نا آدمی میں, اس کے پیچھے ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے.
اللہ
کہ ماں باپ جو ہے بات بات پر بچے کو ٹوک رہے ہوتے ہیں, سختی کر رہے ہوتے ہیں, کسی چیز میں ان کو آگے نہیں آنے دیتے کہ تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے. تو اس طرح بھی بچہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ کہتا ہے کہ میں کسی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. پھر کوئی بھی کام ہوتا ہے تو بولتا ہے وہ کوئی نہ کوئی مجھے ساتھ چاہیے, تبھی یہ کام ہو سکے گا.
یہاں پر آپ کی اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ایک سائنسدان کے حوالے سے اس طرح کا ایک آتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر وہ کمال والا نہیں تھا, یعنی کن ذہن تھا. تو یہاں تک کہ وہ جب پڑھنے کے لیے جاتا تھا اپنے مکتب میں, ایک دن ٹیچرز نے تنگ آ کر کچھ لکھا اور کہا کہ یہ اپنے گھر والوں کو دے دینا. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا, آگے مستقبل میں کچھ نہیں کر سکتا. جب ماں نے پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو کہا کہ اس میں کیا لکھا ہے. کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ میرے بچے کو اس کی ماں ہی پڑھا سکتی ہے. پھر وہ پڑھایا اس نے, وہ وقت بھی آیا کہ سائنسدان بنا, نام ہوا اس کا. یہ کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اعتماد, یعنی اپنے بچوں میں اتنی صلاحیت پیدا کرنا کہ جو والدین, بالخصوص وہ والدین کہ جو بات بات پر ٹوک رہے ہوتے ہیں, تم یہ نہیں کر سکتے, کرو گے تو نقصان ہوگا. بات آپ والی ہے کہ ناکامی کے بعد ہی تو کامیابی ملے گی. ہم گاڑی بھی تو چلا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی میں ایک دم چوتھے گیئر پر نہیں جاتے, کبھی گاڑی تیز کرنے کے لیے ہم بیک گیئر بھی تو لگاتے ہیں. اب گاڑی اگر ہم نے تیز کرنی ہے, سپیڈ پکڑنی ہے, تو اس کے لیے ہم کبھی پیچھے آنا پڑتا ہے, بیک گیئر لگانا پڑتا ہے, جب جا کے ہماری گاڑی سپیڈ پکڑتی ہے.
ڈرائیور تو بریک کی جگہ ریس دے دیتا ہے.
اللہ اکبر.
پھر وہ کہیں ٹھک جائے تو بولے نہیں نہیں میں تو چلا ہی نہیں سکتا. تو نہیں, پھر وہی ہوتا ہے جو ہائی وے پر جا رہا ہوتا ہے, اتنے لمبے لمبے سفر کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں گاڑی سکھانے والا بھی تو کوئی ساتھ ہوتا ہے نا,
یہ
کانفیڈنس دینا بھی پڑتا ہے. اب جیسے بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو یوں کھڑا کرتے ہیں شروع شروع میں, پھر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب یہ کیا ہے, اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھاؤں کہ دین اسلام شریعت جو سیکھتا ہے اور اس پر چلتا ہے نا, وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے, کہاں ہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. علم دین ہوگا تو وہ بادشاہ جو سلطنت ہار گیا تھا اور وہ جو ہے کسی گار میں پڑا ہوا تھا, اس کو ایک چونٹی نے اس کو کانفیڈنس دیا. وہ تو ہمت ہار چکا تھا, وہ سلطنت لٹ چکی تھی, قبضہ ہو چکا تھا, یہ غار میں کہیں پناہ لے رہا تھا, پڑا ہوا تھا, سو رہا تھا, تو دیکھا کہ ایک چونٹی دیوار پر چڑھ رہی ہے, پھر گری, پھر چڑھی, پھر گری, پھر چڑھی, پھر گری, اور پھر وہ اپنے کئی مرتبہ گری لیکن وہ ہمت نہیں آ رہی, وہ چڑھ گئی. تو اس نے کہا ایک چونٹی جو ہے اس میں کانفیڈینس دیکھو,
واہ واہ واہ,
یہ ہمت نہیں آ رہی, گر رہی ہے, چڑھ رہی ہے. تو میں انسان ہو کر یہاں گھر میں پڑا ہوں, یہ کھڑا ہوا اپنی ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی فوج کو اس نے جمع کیا اور لوگ بڑھائے, پھر اس نے وہ ان کو کانفیڈنس دیا, جذبہ دیا, پھر ان لوگوں نے سب نے مل کر دھاوا بولا, تو پھر سلطنت اس کو مل گئی.
کیا
ہمت نہیں ہارنی چاہیے,
ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ خود اعتمادی کے حوالے سے سن رہے ہیں, ہمت واقعتا نہیں ہارنی چاہیے, لیکن جہاں شریعت مطہرہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی, جہاں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ کریں, وہاں پر اپنے اوپر اپنی ذات پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی بھروسے کی بلبوتے پر کہیں تکبر میں نہ پڑ جائیں, حسد میں نہ پڑ جائیں, گناہوں میں نہ پڑ جائیں. کبھی بھی شریعت مطہرہ ہمیں وہ عمل نہیں بتائے گی کہ جس کی وجہ سے ہم گناہگار ہو جائیں. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین اس ٹاپک کو مزید بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوتے ہیں, آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے. آئیے ہم اپنے مہمان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی,
معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور
نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین.
اضحک اللہ سنک, اللہ آپ کی مسکراہٹوں کو سلامت رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے, ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں, مہمان سے ہی ہم کچھ بات کریں گے. آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنا تعارف کروائیں, کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر شاہد ندیم قادری.
माशाल्लाह शाहिद नदीम भाई, मरहबा कहते हैं शाहिद भाई। शाहिद भाई, ये आपके हाथों में बैसाखियां हैं, ये क्या है?
जी, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं जिस तरह नॉर्मल बच्चे दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक था, लेकिन बकौल वालिदैन के तकरीबन 1.5 से 2 साल के दरमियान मुझे पोलियो हो गया। आप जानते हैं कि वालिदैन को अपनी औलाद से यकीनन मोहब्बत हुआ करती है, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, वालिदैन ने, वालिद साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि सही हो जाए, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हाथ और गर्दन बेहतर हो गए, लेकिन ये जो टांग थी मेरी राइट लेग अफेक्टेड ड्यू टू पोलियो।
अच्छा,
तो फिर अब मैं चलता तो नहीं था, वो घुटने जैसे छोटे बच्चे चला करते हैं, तो मैं भी यूं चला करता था, तो वालिद साहब ने मुझे लकड़ी की बैसाखियाँ बनवा के दी छोटी। अच्छा। कि आप चलें, जैसा कि हमारे रुकन शुरा हाजी फजैल अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, तो मुझे चलना तो आता नहीं था, चल नहीं सकता था, लेकिन मैंने सोचा था मैं चल सकता हूँ, उस वक्त की सोच। तो फिर वालिदैन की भी कोशिश रही कि जैसा कि अभी रुकनेश्वरा फरमा रहे थे ना कि बच्चे आप आ जाओ, तो एक हौसला देना ना, उसको मोटिवेट करना, तो यूँ वालिद साहब भी मोटिवेट किया करते थे।
माशाल्लाह।
तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ, उससे पहले यानी कि मुझे वालिद ने स्कूल में दाखिल करवा दिया था और मुझे इलाके के जो बच्चे होते थे वो मुझे अपनी गोद में उठाकर वहाँ ले जाके बिठा देते थे।
अच्छा।
मैं पहली क्लास में पढ़ा करता था और ऐसे ही मुझे उठा के वो घर ले आया करते थे।
अल्लाह।
वो जो भी हैं मुसलमान, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे।
आमीन।
तो फिर उसके बाद से बैसाखियों से चलना मैंने सीखा।
पढ़ाया आपने स्कूल?
जी।
माशाल्लाह, कितनी तालीम है आपकी?
मेरी तालीम अभी मैं एमफिल कर रहा हूँ।
माशाल्लाह। ये आप क्या फरमाते हैं कि खुद एतमादी माजूरी है, लेकिन एतमाद कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने मुल्क, अपनी मिल्लत के लिए बेहतरीन फर्द साबित हो सकता हूँ।
अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत कुछ अता किया है, लेकिन वो हिम्मत करे, अगर हिम्मत करे, मेन चीज ये है कि वही बात आ गई कि पीछे ना हटना। अभी जो पिछला एक सिलसिला हमारा हुआ था तो एक नाबीना हमारे पास आए थे, तो मैं याद कर रहा था कि वो बता रहे थे कि उनकी जौजा भी नाबीना है।
जी,
ठीक है। और वो खाना पकाती है।
खाना पकाती है।
तो हम तो हैरान हुए, हमने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, ये खाना पका लेती है, नाबीना है? तो कहा इनके माँ बाप ने इनकी तरबियत की, इनको सिखाया चूल्हा कैसे जला लेती है। बोले सारा तरीकेकार इसको समझाया और बिल्कुल उसके मुताबिक वो पका रही होती है। कमाल हो गया,
बल्कि उन्होंने हमें दावत भी दी थी।
वो दावत याद आ गई। अब बात वही है ना कि सिखाए और जज्बा दिलाए। जब एक मासूर जो है उसको अगर जज्बा दिलाया जाए, कॉन्फिडेंस दिलाया जाए, तो वो क्या कुछ नहीं कर लेता। माशाल्लाह, ये बता रहे हैं कि एमफिल कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, वरना तो कई ऐसे माजूर होते हैं जो हाथ भी फैला रहे होते हैं। सीधी बात है, लेकिन नहीं जी
बल्कि आज साहब माजूर तो दरकिनारे, हट्टे कट्टे ठीक ठाक लोग मांग रहे होते हैं।
हाँ, जाहिर है वो उन्होंने अपना एक पेशा बनाया हुआ होता है, तो उन्होंने अपनी इसको वो रोजी का वो जरिया बनाया हुआ होता है।
मदनी चैनल के नाज़रीन, ये प्रोग्राम भी हमारा असल यही है कि वो अफराद के जो माजूर हैं वो अपनी इस माजूरी को मजबूरी ना बना लें। ये तो उन लोगों के लिए हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी मांगने की तरफ नहीं आए, बल्कि अपने ऊपर एतमाद करें, भरोसा करें अपने ऊपर, ये हिम्मत पैदा करें कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने अगर एक नेमत से महरूम किया तो कई एक और सलाहियात जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, दीगर से बढ़कर अता फरमाई है। अब जिस तरह रुकन शुरा फरमा रहे थे कि वो भाई हमारे जो कुछ टाइम पहले हमारा प्रोग्राम था, वो भी नाबीना, उनके घर वाले भी नाबीना, ये क्या था? अल्लाह ताला ने ये सलाहियत और भी उनको अता फरमाई। वो नोट भी चेक कर लेते हैं, ये भी बता रहे थे मैं नोट चेक कर लेता हूँ, पहचान। अल्लाह ताला कोई एक नेमत से अगर किसी को महरूम करता है तो कई एक और नेमत है इजाफे के तौर पर भी अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। उनकी सुनने की हिस इस कदर तेज हो जाती है कि वो सांस से पहचान लेंगे, वो कदमों की आहट से पहचान लेते हैं कौन बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला करम करने वाला है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें बिलखसूस उन लोगों के लिए सबक है, सेहतमंद होने के बावजूद कासा फैला लेते हैं, मांगने पर आ जाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बात करते हैं शायद भाई, क्या करते हैं
जी? आपने जो इरशाद फरमाया, तो ये अल्लाह पाक का करोड़ा करोड़ एहसान अजीम है कि मुर्शिद के फैजान से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरा।
अच्छी जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब में आपका काम क्या है?
कंप्यूटर ऑपरेटिंग।
अच्छा, क्या बात है, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। शायद भाई आपसे माशाल्लाह हमने ये पैकेज देखा है, दर्स भी दे रहे हैं आप और नमाज का भी सिलसिला है, तो आपका वो नहीं होता जहन में आता कि यार मैं तो माजूर हूँ, पोलियो का मरीज हूँ मैं क्यों मस्जिद की तरफ जाऊँ, नमाज पढ़ूँ, मैं क्यों जाऊँ दर्स देने के लिए, मैं क्यों दीनी काम करूँ? हालांकि बहुत से तो वो हल्की सी वो हवा भी चले तो बैठ जाएंगे, दर्स भी नहीं देंगे, बल्कि अल्लाह ताला की पनाह के वो नमाज की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो क्या आपका नहीं कभी जहन में ये आया कि यार मैं बैठ जाऊँ घर में बस?
एक तो अल्लाह पाक का ये करोड़ा करोड़ एहसान अजीम है कि मैट्रिक में ही ये दीनी माहौल मिल गया था,
अल्हम्दुलिल्लाह।
तो गुलजार है भी दावत इस्लामी का अव्वल मदनी मरकज
अच्छा,
का सिलसिला,
आप तब से दीनी माहौल से वाबस्ता हैं?
तो सिलसिला रहा, तो
माशाल्लाह।
यूं मतलब है कि वो बापा का फैजान मिलता रहा और दीनी माहौल से वाबस्ती की रहने की वजह से ना, यूं मैं आपको एक मिसाल दूंगा यहाँ पे शाह साहब कि खुशबू जो होती है ना फूल में, वो उस वक्त तक होती है जब तक वो दरख्त के साथ होता है, आप उसे तोड़ेंगे ना तो आखिरकार वो फूल एक टाइम आएगा फेंक देंगे।
कुछ देर तक रहेगी
जी
खुशबू,
जी
लेकिन
इसका मकसद है कि आप इस दीनी माहौल से अगर आप
हाय हाय
जुड़े रहेंगे ना तो
वाह
आप
वाह
मोहतर मोहतर रहेंगे।
क्या बात है,
तो ये ऐसी थिंकिंग नेगेटिव बनी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या बात है,
अल्लाह तारे शजर से उम्मीद बाहर रख।
मदनी चैनल के नाजी, बड़ी प्यारी बात की हमारे शाहिद भाई ने कि दरख्त के साथ रहेंगे तो आप लोगों की नजरों का मरकज बने रहेंगे, टूटे तो फिर वही बात है कि कुछ ही टाइम के बाद मुरझा जाएंगे। बुजुर्गों ने कहा कि एक मर्तबा एक किसी शख्स ने ना पत्थर फेंका और वो डूब गया, पत्थर फेंका तो डूब गया। कहा कि ये क्या, ये तो डूब गया। उसने कहा नहीं, डूबा नहीं, हमने तो ये देखा जो आपसे जुदा हो गया वो डूब गया,
अल्लाह
आपके हाथ से गया वो डूब गया,
डूब गया।
जुड़े रहेंगे वो जो रुकनेश्वर ने कहा ना, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हमें कई एक बरकत नसीब होंगी, नमाजों का जहन, हमें नेकी की दावत का जहन, दीनी कामों का जहन, मदनी काफिलों का जहन, इंशाल्लाह ये जहन हमें मिलता रहेगा। हम दुनियावी मामलात के साथ, काम काज के साथ, जॉब के साथ, हम ये अल्हम्दुलिल्लाह जब दीनी एक्टिविटीज में अपने आप को मशगूल रखेंगे, अपना दिन हमारा मसरूफियत में गुजरेगा, अल्लाह ने चाहा तो गुनाहों से बच जाएंगे। खाली जहन जब होकर बैठ जाएंगे तो फिर वो तो शैतान की अमाजगाह बन जाएगी, शैतान फिर आके डेरे डाल लेगा, न जाने कैसे कैसे गुनाह करवाएगा। बहरहाल अल्लाह पाक दावत इस्लामी के प्यारे प्यारे दीनी माहौल के साथ हमें हम आदम वाबस्तगी अता फरमाए। भाई साहब, हमारा मौजू चल रहा है खुद एतमादी, खुद एतमादी के कहीं कोई नुकसान भी हैं, क्या फरमाते हैं आप?
नुकसान पर तो हमने अभी कुछ बात की अपने ना, कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे को पैदा करना है तो हकीकत को भी इसको समझना होगा
जी।
अब जैसे मैंने आप ही की मिसाल दी कैमरा चलाने की, तो आपने आप ये बात हुई कि भाई मैं चला तो लूंगा, सीखूंगा तो
जी।
लेकिन खुद एतमादी ये भी है कि आप बोले मैं क्यों कैमरा चलाना सीखूं भाई
जी।
मेरी फील्ड ही नहीं है,
फील्ड नहीं है मेरी,
है ना। यानी सारे समुन्द्र का पानी हम नहीं पी सकते,
बिल्कुल।
बाज़ वक़्त बंदा ये सोच रहा होता है ये भी मुझे आ जाए, 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 तो ये सारे समुद्र का पानी तो हम नहीं पी सकते। सीधी बात है, अल्लाह पाक ने सबको मुख्तलिफ सलाहियतें दी है, हर एक अपनी सलाहियत को पहचाने
जी।
अल्लाह पाक ने हर एक को अलग अलग सलाहियतें अता की है, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, इसको एक्सेप्ट करना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ये कॉन्फिडेंस है कि और ये देखे कि मुझे क्या सलाहियत मेरे रब ने दी, इस चीज को पहचाने। मतलब जब अपने आप को ही नहीं पहचान
पहचाने,
अपनी सलाहियत को पहचाने ना कि अल्लाह पाक ने मुझे क्या सलाहियत दी है और जो अल्लाह पाक ने अता किया है इसको ये इम्प्रूव करे, इस पर ये आगे बढ़े। देखिए ये है यानी आगे बढ़ने का जज्बा, और अपनी नाकामी, अपनी कमजोरी, अपनी काहिली का जिम्मेदार दूसरे को नहीं बनाना चाहिए। बंदा बाजू का ये होता है कि खुद सुस्त है, खुद काहिल है, खुद पड़ा हुआ है, खुद कुछ नहीं कर रहा, कभी इस पर इल्जाम डालेगा उस पर डाले। एक शख्स था वो कहता है मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, इमिग्रेशन से बाहर निकला, तो बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक चमचमाती हुई टैक्सी मेरे पास आ गई, बड़ी खूबसूरत, बड़ी साफ सुथरी। उससे एक नौजवान निकला, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बेहतरीन साफ सुथरे कपड़े, जैसे कि अभी अभी जैसे वो जो प्रेस करके अभी आकर आया, का सर प्लीज तशरीफ रखें, आए बैठे, बड़ी मोहब्बत से इसने मुझे बिठाया।
वाह।
अंदर का माहौल मैंने देखा टैक्सी का तो बाहर से ज्यादा अच्छा, खुशगवार, एसी चल रहा है, ठंडक हो रही है, सुकून मिल रहा है। वो आकर साथ बैठा और कहा सर चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ग्रीन टी लेंगे। बोले टैक्सी है, चाय कॉफी ग्रीन टी? तो बोले मैंने मुस्कुरा कर, बोले मेरे पास मशीन लगी हुई है इसके अंदर, मैं दे सकता हूँ। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा मुझे तो लस्सी भी नहीं है। कहा सर कोई बात नहीं, मेरे पास कूलर रखा हुआ है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भी है, लस्सी भी है। लस्सी उसने मुझे दे दी। बोले मैं हैरान हूँ। अब वो गाड़ी उसने चलाना शुरू किया, कुछ चीज़ें दी कि आप पढ़ना चाहें तो ये चीज़ें मेरे पास रखी हुई, आप इसका मुताला कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसने कहा कि मैं अब ये जिस जिस इलाके से गुजर रहे हैं हम, आप चाहें तो मैं इसकी मालूमात आपको दे सकता हूँ, और चाहें तो आप अपने ख्यालात में घूम रहे हैं, आपकी मर्जी। वो शख्स कहता है कि भाई तू कैसा टैक्सी वाला है, ये क्या वी क्या शुरू से ही ऐसे हो तुम? कहा नहीं, पहले बेबी जो है ना इन दूसरे टैक्सी वालों की तरह जो है रोता धोता था, अपने ग्राहकों से लड़ता था, झगड़ता था, लेकिन फिर मैंने खुद सोचा यार ये क्या कर रहा है तू, ये नहीं कर तू, अच्छा लेकर आ,
वा, वा, वा।
और तू अच्छा कर और लोगों को तू फैसिलेट कर, तू इनको क्यों शिकायत कर रहा है, इनको क्यों शिकवे कर रहा है, तू अपने काम को अच्छे से अच्छा कर। मैं उस पर गौर करने लगा, यानी नेगेटिव जो थिंकिंग थी उसको मैंने पीछे कर दिया और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आया। और सबसे पहले मेरी समझ में आया कि इसको मैं अपनी गाड़ी को साफ सुथरी करूं, अंदर जो है ये माहौल ऐसा होना चाहिए, और एक जो मेरा कस्टमर है उसको मैं क्या क्या मतलब सहूलत दे सकता हूँ। फिर मैं बात तदरीज ये बढ़ता चला गया इसमें, और मजीद भी अब मैं सोच रहा हूँ कि और मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि भाई इससे कोई आमदनी में फायदा हुआ? बाप पहले महीने मेरी आमदनी डबल हो गई, और अब तो मुझे लग रहा है कि 4 गुना हो जाएगी इस महीने, और मैं तो दूसरी टैक्सी लेने के उसमें हूँ कि अब दूसरी भी लेनी है और अपने तरह का एक बंदा उसमें बिठाना है और मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा। लोग अब मुझसे खुद रब्ता करते हैं, यार इतना फैसिलेट करता है, इतना बेहतरीन बंदा है और इतने सुकून से इसके साथ सफर करते हैं। तो इसने क्या किया, इम्प्रूव किया अपने आप को। ये बात वही हुई कि इसकी एक फील्ड थी, इस फील्ड में जो है ये बेहतरी लेकर आया,
यानी कि
इसने सोचा।
जी जी
सोचा। अब वो माजी की बातों को लेकर बंदा बैठा, भाई जो गुजर गई वो गुजर गई, मुस्तकबिल उसका पता नहीं है, भाई हाल तो सही कर।
क्या बात है कि अपने आप को समझे मदनी चैनल के नाजिन कि अल्लाह पाक ने मुझे क्या सलाहियत दी है। बड़ी प्यारी बात की रुकने शुरा ने। आइए मदनी चैनल के नाजिन एक और पैकेज देखते हैं। जी
मेरा नाम मोहम्मद इमरान अत्तारी है और मैं डॉक्टर शाहिद नदीम कादरी को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। शाहिद भाई माजूरी के बाद भी लेकिन अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि मैं माजूर हूँ, और खुद माजूर हैं लेकिन लोगों की मदद माशाल्लाह करते रहते हैं, और ये अपने घर वालों के साथ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रवैया इनका, और इलाके में भी इनकी रेपुटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। यानी कोई इनसे सवाल करे कि कहीं जा रहे हैं जैसे बाइक पे, हालांकि ये माजूर हैं लेकिन इनसे कोई भी सवाल करता है कि मुझे आगे छोड़ दें या मेरी मदद कर दें, तो उनकी मदद करते हैं। और इनका ये माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और ये माशाल्लाह माजूर के बाद भी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, ठीक है। इन्होंने होम्योपैथिक का कोर्स किया, डॉक्टर बने, उसके बाद यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी मुश्किल होता है एक माजूर आदमी के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की और माशाल्लाह आज ये इस मकाम तक पहुँचे हैं। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ जैसे और माजूर लोग हैं, मैं देखता हूँ कि रोडों पर खड़े ने भीख मांग रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए इन्हें कि ये माजूर होने के बाद भी इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, तो उन्हें भी इनसे सीखना चाहिए कि उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। जो लोग माजूरी को मजबूरी बनाते हैं ये उनके लिए एक सबक है।
मेरा नाम सलीम अत्तारी है और मैं डॉक्टर नदीम शाहिद को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, यानी इनकी उम्र कमावेश 12 या 13 साल की होगी। ये स्कूल पढ़ रहे थे जब, और ये हमारे वालिद साहब मस्जिद में इमामत करते थे रहमानी मस्जिद में, तो वहाँ ये अपने पढ़ाई के दौरान भी मदरसा लगाते थे, और इसके अलावा ये हमारे वालिद साहब बयान करना नहीं जानते थे, ये बयान भी करते थे जुमे का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतें, इनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं। ये अपनी तालीम भी करते थे और मदरसा भी पढ़ाते थे बच्चों को, और अपने घर वालों को भी देखते थे। फिर इनके बाद तालीम के बाद इन्होंने स्कूल खोला, इन्होंने स्कूल खोला, मेहनत करते रहे और उसमें भी बड़ी कामयाबी हासिल की। फिर इन्होंने अपना कोर्स किया होम्योपैथिक का, उसमें भी महारत हासिल की इन्होंने, और इनका अखलाक الحمدللہ کسی سے بھی ملتے، کسی قوم سے بھی ملتے، الحمدللہ انہی کی زبان میں بات کرتے، پنجابی میں ان سے ملتے پنجابی میں بات کرتے، سندھی سے ملتے ماشاءاللہ سندھی سے ایسے بات کرتے، ماشاءاللہ ان کا کردار بڑا پاپولر رہا ہے الحمدللہ. اور ہر کسی سے اخلاص سے ملنا، اپنے کردار کو انہوں نے ظاہر کیا ہے اور اچھی طرح انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے الحمدللہ. پھر فیضان مدینہ میں الحمدللہ نوکری کی انہوں نے، وہاں پہ بھی ماشاءاللہ اپنا کردار اچھا ادا کیا، اور اپنے سیوک سینٹر میں بھی ماشاءاللہ نوکری کی، وہاں سے بھی اپنا کردار اچھا کیا. یعنی محتاجی اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں انہوں نے کہ میں اپاہج ہوں، اور بڑھتے چلے گئے. پھر کوچنگ سینٹر کھولا انہوں نے، کوچنگ سینٹر میں بھی اپنے کامیابی حاصل کی. تو میں ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جو اپاہج ہوتے ہیں، وہ بیچارے بھیک مانگا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ہاتھ آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھیں، اور بلکہ کام میں لگے رہیں جس طرح ہمارے ڈاکٹر ندیم شاہد لگے رہے، اور محتاجی سے بچتے رہے، اور کامیابی کی سیڑھی چلتے رہے. انہوں نے اپنا مکان بھی خریدا ماشاءاللہ اپنی کاوشوں سے، اسی مکان میں ہم بیٹھے ہوئے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں الحمدللہ. ان کی کاوشیں کامیابی بہت حد تک الحمدللہ بہت حد تک بڑھی ہیں، اور الحمدللہ ان کا کردار بھی بہت اچھا رہا. نمازی ماشاءاللہ پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ابھی بھی امامہ سجائے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور کام کرتے ہیں دعوت اسلامی کا بھی. ہر کسی سے اچھی دعا سلام ہے الحمدللہ، جو ان سے بات کرتا ہے الحمدللہ ان کا گردیدہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے، ان سے محبت کرنے لگتا ہے. کہ اس لیے بھی محبت کرتا ہوگا کہ ایک معذور آدمی اتنا محنت کر رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل میں رحم ڈالتا ہوگا، اور ان سے اچھی دو ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور ان کا کردار بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. میں ان لوگوں کو میسیج دینا چاہوں گا جو اپاہج ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو میسیج دوں گا کہ وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور محتاجی سے بچے، محنت کریں جس طرح ہمارے ڈاکٹر ندیم شاہد نے محنت کی اور کامیابی حاصل کی. تو ہر بندہ پانچ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور محنت کرتا رہے. اور دیکھو جو لوگ جو اپاہج بھی نہیں ہوتے وہ بھی اس طرح کے بھیک مانگتے ہیں، میں ان کو بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، محتاج نہ بنیں. شاہد ندیم یہ معذور ہیں مگر مجبور نہیں ہیں.
شاہد بھائی ماشاءاللہ ہم نے دو پیکج دیکھے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری گفتگو فرما رہے ہیں، بچپن سے ہی آپ کو ایک بزرگ تو فرما رہے ہیں، آپ کو جانتے ہیں کافی ٹائم سے، کیونکہ یہ آپ کو جانتے ہیں، دوسرے اور بھائی بھی ہیں. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیا کبھی پریشانی نہیں ہوئی آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟
جی والدین نے کوشش، حوصلہ بڑھاتے رہے والدین نا، اور وہ کرتے رہے. اور باقی آپ نے جہاں تک بات کی ہے پریشانی کی، تو پریشانی تو نہیں، اس میں پریشانیاں آتی رہی. تو اس میں مطلب یوں بھی ذکر کروں کہ اب ظاہر ہے گاڑی تو ہوتی نہیں، پیدل ہی جایا کرتا تھا. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ بس پر چڑھا، ایک بیساکھی رکھی اور گاڑی چلا دی اور نیچے گر گئے. اور کبھی ایسا ہوا کہ اترنے لگے تو ایک بیساکھی نیچے رکھی اور گاڑی چلا دی. اور یوں مطلب بسا کا تو یوں بھی ہوا ہے کہ وہ ٹائر چڑھتے چڑھتے ہی جیسے اللہ پاک نے رحم فرمایا. تو یوں مشکلات پریشانی تو آتی ہے نا. تو اب ہم اگر اپنا جب ہمارا ایک گول ہے نا، ایک ہم نے اپنا ایم سیٹ کر لیا ہے، اب مشکلات پریشانیاں تو ان کے سامنے آتی ہیں جو کامیابی کی طرف گامزن ہوا کرتے ہیں. اور زندگی نام ہے مسلسل جدوجہد کا، اور اس کا جو حسن ہے نا وہ اسی سے قائم ہے. چار گاڑیاں بدل کر جاتا تھا، تو مشکلات پریشانی الحمدللہ مطلب ماسٹرز کیا، ڈبل ماسٹرز کیا، بی ایڈ، ایم ایڈ، اور ابھی الحمدللہ ایم فل کر رہا ہوں، آگے میرا پی ایچ ڈی کا ارادہ بھی ہے، میرڈ ہوں. تو یہ سب اللہ پاک کا کروڑ ہاں کروڑ احسان عظیم ہے.
شاہد بھائی ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی پڑھائی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، آگے پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ ہے. اچھا کانفیڈینس پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
अब देख, जाहिर सिलसिले का वक्त तो अब इख्तिताम पर है और इस पर तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाए।
क्या बात है,
यानी कल जो दर्श नहीं देता था आज दर्श देता है, कल बयान नहीं करता था ये कॉन्फिडेंस तो है।
क्या बात,
और क्या, जो एक के सामने बात नहीं कर सकता था आज वो हजारों के सामने बयान कर रहा है। आप या मैं यहाँ बैठकर अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो चैनल पर ये बात जा रही है, कैमरे के सामने बोलना, तो ये दावत इस्लामी का माहौल ही है ना। इस माहौल से वाबस्ता रहें, दीनी कामों में मसरूफ रहें, नेक आमाल और अमल करते रहें, मदनी काफिलों में सफर करते रहें, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा अल्लाह की रहमत से, इल्म भी सीखने को मिलेगा और कहाँ कितना एतमाद होना चाहिए ये सब सीखेंगे इंशाल्लाह।
हर चीज मदनी चैनल के नाज़रीन सीखने से ही आती है, ऐसा नहीं है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो बहुत सी सलाहियात अपने अंदर लेकर आता है, कोई भी कुछ करता है तो सीखने से ही करता है। किसी ने भी कोई मकाम, कोई मर्तबा, कोई ओहदा पाया है तो इसके पीछे उसकी मेहनत है। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मेहनत करते हैं, हिम्मत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। जहां हमने दुनियावी मामलात में अपने आप को आगे लेकर जाना है, हमने आखिरत को नहीं भूलना, आखिरत में भी हमने आगे आगे बढ़ना है। अल्लाह पाक वो आमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि जिनकी वजह से हम कल क्यामत वाले दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाए, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब मिल जाए, जन्नतुल फिरदौस की बहारें अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए और जन्नतुल फिरदौस में नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो जाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ है, एक शोबे का तारुफ लेते हैं, आइए देखते हैं।
दावत इस्लामी के तहत स्पेशल पर्संस में नेकी की दावत आम करने और उनसे कन्वर्जेशन यानी मुकालमे के लिए इशारों की जबान के कोर्सेज का भी एहतमाम किया जाता है। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क से तकरीबन 4000 इस्लामी भाइयों को साइन लैंग्वेज कोर्स करवाए जा चुके हैं। ये कोर्सेज करने वाले आशिकाने रसूल गुंगे बहरे अफराद से इशारों की जबान में गुफ्तगू करने और उन तक अपने ख्यालात थॉट्स पहुँचाने के अहल हो जाते हैं।
जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, शोबे का तारुफ भी आपने देखा, टाइम भी इख्तिताम की तरफ, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारा आज का ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। बिजाह खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मोहताजी ना हो।